इतना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
माता पिता भाई बहनों का,
माता पिता भाई बहनों का सुंदर सा संसार।
इतना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
तो कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
परम पिता शिव भगवान और ब्रह्मा बाबा माली, स्नेह शांति सुख की फैली है हरियाली खुशहाली।
परम पिता शिव भगवान और ब्रह्मा बाबा माली, स्नेह शांति सुख की फैली है हरियाली खुशहाली।
रूहानी रौनक से गुलशन
ये तो गुलों गुलजार।
कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
बाबा सूरज मम्मा चंदा बच्चे ज्ञान सितारे, जग को रोशन करने वाले ये दो नयन हमारे।
ओ बाबा सूरज मम्मा चंदा बच्चे ज्ञान सितारे, जग को रोशन करने वाले ये दो नयन हमारे।
हम उन पे बलिहार हुए हैं,
हम उन पे बलिहार हुए हैं, वो हम पे बलिहार।
कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है। कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।
ओम शांति। आज प्रभु परिवार का तीसरा दिन। पिछले दो दिनों में हमने देखा, एक तो पुरुषार्थ स्नेही बनना है और दूसरे दिन में देखा कि कौन कौन से विघ्न आ सकते हैं, कैसे उनसे पार करना है। और आज तीसरा दिन है प्रभु परिवार की श्रृंखला का। तो इसमें बाबा ने कुछ सौगात दी है, कौन सी सौगात है और उसे कैसे यूज़ करना है वो देखेंगे। ये मुरली है 16 जून 1969। बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना। सौगात छिपाकर रखनी होती है ना, तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। क्या शिक्षा देते हैं कि सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार है उन सब से आज्ञाकारी वफादार बनकर चलना है। यह है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। बस इतना सा पैराग्राफ है, मूल्य तो बड़ी है वो। तो बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना। सौगात छिपा कर रखनी होती है ना, कौन सी सौगात मिलती है हमको? हाँ जी है? स्वर्ग की बादशाह यार, वो तो फ्यूचर की है, वो तो दिखाई थोड़ी दे रही है। अभी कौन सी सौगात जो दिखाई देती है? गोल्डन वर्शंस बाबा के महावाक्य, जो प्रैक्टिकल में सामने सौगात दिखाई दे उसकी खुशी होती है, वो बाद में मिलने नहीं मिल तो दिखाई नहीं दे रही। अभी ब्राह्मण जीवन ही सौगात है, और सौगातों की सौगात सबसे बड़ी कौन सी मिली? स्वयं भगवान ही मिल गया। तो बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना, सौगात छिपा कर रखनी होती है ना, तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। क्या शिक्षा देते हैं कि सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार है उन सबसे आज्ञाकारी वफादार बनकर चलना है। ये है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। तो इसमें दो बातें हैं, आज्ञाकारी और वफादार। जो बाबा हमको सौगात देते हैं, अगर हम उसको, यहाँ तो वैसे बाबा ने कहा छिपा कर रखनी होती है, लेकिन अगर वो सौगात यूज़ नहीं करते, हम उसको ऐसे रखे रहते हैं तो जैसे होते हो उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो बाबा हमको इतनी ऊंची सौगात देते हैं, गोल्डन वर्शंस महावाक्य। अगर हम उनको अपने जीवन में धारण करते जाएंगे, अच्छी तरह से उनको ग्रहण करते जाएंगे, तो सौगात को हम यूज़ कर सकते हैं, उसका सुख ले सकते हैं, ना केवल हम स्वयं बल्कि दूसरों को भी उसके सुख की अनुभूति करा सकते हैं। तो इसमें दो बातें हैं, एक है आज्ञाकारी और दूसरा है वफादारी। तो परिवार के प्रति आज्ञाकारी वफादारी कैसे बनना है, बहुत सारी मुरलियाँ हैं उसके ऊपर, क्योंकि आज्ञा हमारे ब्राह्मण जीवन का सुरक्षा कवच है, जैसे सेफ्टी का साधन है। अगर हम आज्ञाओं पर चलते रहते हैं तो निरंतर खुशी बढ़ती जाएगी, हमारी उन्नति होती जाएगी। उन्नति का साधन है आज्ञाएं, मर्यादाएं, हैं जी, दुआओं का आधार है। कल के मूल्य में था ना, बद्दुआएं और अकृपा। अगर पढ़ाई छोड़ते हैं तो अपने ऊपर बद्दुआ है, अकृपा है। पढ़ाई ठीक से पढ़ते हैं तो दुआएं हैं, कृपा है। और कुछ दिन पहले था, अगर रोज मुरली सुनते हैं तो डैश नहीं हो सकते, फेल नहीं हो सकते। हाँ, साकार मुरली में था कुछ दिन पहले, अगर रोज मुरली सुनते हैं तो कभी फेल नहीं हो सकते। तो ये गोल्डन वर्शंस हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। अगर उनको हम अच्छी तरह से पढ़ें, चिंतन करें, तो जितनी भी आज्ञाएं हैं उन पर चलना सहज हो जाता है, क्योंकि ये गोल्डन वर्शंस हमको आज्ञाओं पर चलने की ताकत देते हैं, रास्ते को क्लियर बताते हैं। अगर ये गोल्डन वर्शंस हम उनको ठीक से नहीं ग्रहण करते हैं तो कौन कौन सी हमको आज्ञाएं मिली हैं और उन पर कैसे चलना है, उन पर चलने का जो सामर्थ्य है वो फिर मिलता नहीं है। तो सवेरे से लेकर रात्रि तक बाबा ने हम सबको आज्ञाएं दी हैं। कौन कौन सी आज्ञाएं हैं? अमृत वेले से रात्रि तक, उसके ऊपर मुरलियाँ भी हैं बहुत सारी, 70 की मुरली है। तो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक बहुत सारी आज्ञाएं हैं। अमृत वेले कैसे उठना है, कैसे करना है अमृत वेला, फिर उसके बाद मुरली में कैसे करना है, कर्म क्षेत्र में क्या करना है, चार्ट कैसे देना है, रात्रि को कैसे सोना है, ये हर चीज़ की आज्ञा मिली है। अगर उन आज्ञाओं पर धीरे 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 हम चलते रहेंगे तो हमारी स्थिति मजबूत होती रहेगी, सोन्नति होती रहेगी। तो अमृत वेले के लिए क्या आज्ञा मिली हुई है, क्या आज्ञा मिली अमृत वेला, क्या बाबा को याद करना, बाबा से गुड मॉर्निंग है ना, परम धाम में बैठना है, अलर्ट होके बैठना। आज बाबा ने जो 4:30 बजे सुना उसमें क्या सुना था, अमृत वेले अगर अलर्ट होके नहीं बैठे तो बाबा वरदान देके चला जाएगा और आप खाली रह जाएंगे। तो अमृत वेले है अलर्ट होके बैठना, अमृत वेले उठना, उसमें भी उठने के भी मार्क्स हैं, लेकिन शक्तिशाली स्थिति अनुभव करने के लिए अलर्ट होके बैठना पड़ेगा और उसके लिए पहले से तैयारी चाहिए। खाली अगर हम उठ के बैठ के बिना सोचे समझे, कोई तैयारी नहीं है, पूर्व तैयारी या क्लियर नहीं है, प्लान नहीं है उसका कि हमको क्या करना है, तो भी शक्ति की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए अलर्ट होके बैठना एकदम, और अलर्ट होके कब बैठ सकते हैं, जब हमको अमृत वेले के महत्व का पता होता है। बिना महत्व के हम बैठ गए हैं तो भी इतनी शक्ति की अनुभूति नहीं होती है। और दूसरा, अमृत वेले जब हम बैठते हैं तो दो बताया प्लानिंग, अपने मन बुद्धि को उतना समय हम बांध के रखते, इधर उधर जाए नहीं, उतना समय फुल चार्जिंग की अनुभूति होती रहे। जैसे बाबा ने कहा अमृत वेले बाप बच्चों को वरदान देते हैं, तो वो हमको रियलाइज़ करना, महसूस करना है, क्योंकि अमृत वेला एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सारे दिन की नींव है, फाउंडेशन है, खुराक है, शक्ति है। अगर वो हमारा शक्तिशाली है, बाबा ने कहा मुरलियों में भी, अमृत वेला ठीक तो सारा दिन ठीक। अमृत वेले गाड़ी को पटरी पर डाल दो तो चलती रहेगी, लेकिन सारा दिन पटरी भी ठीक देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर ठीक ठाक डाल दी हमने तो चलती रहेगी। तो अमृत वेला जैसे हमारे लिए एक अमृत तुल्य है, अमृत के समान है। तो जो अमृत वेले हमको बाबा से इतने वरदान, अपने को स्वयं को इतना चार्ज कर लेना कि सारे दिन वो वरदान हमको पटरी पर स्वतः चलाते रहे, चलने के लिए हमको मेहनत ना लगे। तो अमृत वेले वरदानों से स्वयं को भरपूर कर लेना है, चार्ज कर लेना है। और अमृत वेले क्या करना है, जितने बाबा कहते हैं संसार में कितनी आत्माएं भटक रही हैं, क्योंकि सारा संसार सोया रहता है, उस समय संसार के सभी आत्माओं के संकल्प भी सुषुप्त अवस्था में हैं। हम गिनी चुनी आत्माएं हैं जो जागृत अवस्था में, जिनका कनेक्शन स्वयं भगवान से है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अमृत वेला बच्चों के लिए है, फिर उसके बाद भक्तों के लिए है। तो अमृत वेला हमारा जो संबंध है बाबा से बहुत नज़दीक है, बाबा के हम बहुत समीप हैं, उसके बाद फिर भक्तों के लिए है। तो जो अमृत वेले का थोड़ा सा टाइम भी है, जितना भी टाइम हम बैठते हैं, अलर्ट हो गए, एक्यूरेट हो गए, एकदम अटेंटिव हो गए, शक्तिशाली अमृत वेला करना है। तो ये पहली आज्ञा, अगर इस आज्ञा को हमने पूर्ण रूप से कायम रखा तो फिर सारा दिन हमारा शक्तिशाली रहेगा। दूसरी आज्ञा कौन सी मिली है अमृत वेले के बाद, सोना नहीं है, ज्ञान चिंतन। कई दफ़ा ये भी बताते कि अमृत वेला खाली योग के लिए नहीं है, चिंतन करना भी बड़ा ज़रूरी है। कई बार हमने देखा अमृत वेले अगर थोड़ा सा अमृत वेला करने के बाद में चिंतन थोड़ा चालू कर दो तो वो बहुत शक्तिशाली होता है, और सवेरे सवेरे अच्छे अच्छे संकल्पों की टचिंग होती है। क्योंकि बताया ना, सारा संसार सोया है, तो मन बुद्धि हमारा फ्री है, क्लियर है, तो उसमें अच्छे अच्छे संकल्पों की टचिंग होती है। तो अमृत वेले के साथ में ज्ञान का चिंतन भी करना आवश्यक है। और एक बार हमको चिंतन करने की आदत पड़ जाएगी तो अच्छा अच्छा चिंतन अपने आप स्वतः, नए नए संकल्प अपने आप टच होंगे, अवतरित होंगे वो। तो ज्ञान का चिंतन करना अनिवार्य है, ये भी इसलिए बाबा कहते हैं, ये भी एक आज्ञा है। अगर वो चिंतन नहीं करेंगे तो बीमार गाय जैसा बन जाएंगे। तो हम कौन सी गाय हैं, बीमारू गाय नहीं है, जुगाली करने वाली हैं, चिंतन करने वाली हैं। फिर मुरली के लिए क्या आज्ञा मिली है, उस दिन परसों भी बताया था ना रात्रि क्लास में, मुरली की अगर थोड़ा सा भी हमारी सावधानी हटी तो कौन सा महावक के हमारे हाथ से छूट जाएगा, जो हमको परिवर्तन करने वाला होगा तो उस तीव्र गति से हम परिवर्तन भी नहीं होंगे। तो मुरली सुनते हुए इसमें भी अलर्ट होके बैठे, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, कुछ हो रहा है, देखना ही नहीं है उसमें। अगर हम, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है इस ब्राह्मण लाइफ में, शुरू शुरू में तो बहुत नशा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो मुरली के प्रति थोड़ा थोड़ा हमारा प्यार कम होता जाता है। और मुरली के प्रति प्यार कम है माना सारे पुरुषार्थ से प्यार थोड़ा ढीला हो जाएगा। फिर बताया वो गोल्डन वर्शन सौगात है हमारे लिए, सारे दिन की खुराक है वो। अगर वो खुराक हमने ठीक से नहीं खाई, उसको ठीक से ग्रहण नहीं किया, उसको ठीक से सुना नहीं है, उसको ठीक से अमल में नहीं लाया है, तो हमारे हाथ से वो खुराक निकलेगा, वो सारा दिन हमारा कमजोर लेगा। जितना अमृत वेले का महत्व है उतना ही मुरली का भी महत्व है। मुरली के जितने पॉइंट हमारी बुद्धि में बैठेंगे, चिंतन चलेगा, तो अमृत वेला भी शक्तिशाली होगा, सारे दिन की दिनचर्या भी शक्तिशाली होगी। इसलिए मुरली को भी उतना महत्व देना है, क्योंकि मुरली हमारे जीवन का श्वास की तरह काम करती है। मुरली सर्व समस्याओं का हल है। बाबा कहते हैं मुरली एक ऐसी लाठी है जो आपको सीधा स्वर्ग में पहुंचा देगी। मुरली नियमित सुनते हैं तो कभी फेल नहीं होगी। मुरली के बारे में कितने महावाक्य हैं। मुरली के लिए जो आज्ञा मिली है उसी अनुसार उसको सुनना, ग्रहण करना। जैसे हम एक गोल्डी स्टूडेंट बनकर सुन रहे हैं, स्टूडेंट कैसे होशियार अलर्ट होता है, उसको पता थोड़ा सा टाइम है, अगर उसने पढ़ाई नहीं पढ़ी तो फेल हो जाएगा। तो हम भगवान के सामने बैठे हैं, वो हमको पढ़ाने के लिए आया हुआ है, और उसके साथ उनके महावाक्यों का उतनी तवज्जो से या उतनी महत्व देकर अगर अनुसरण करते हैं तो टीचर का भी हमको आशीर्वाद मिलता है। नहीं तो टीचर की नज़र भी कहाँ रहती है, कौन से बच्चों पर जो उसकी पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं आशीर्वाद तो सब पर है, कृपा तो सब पर करता है, लेकिन कृपा करना क्या है, जो उसको जितना महत्व होता है अपने ऊपर तुम खुद ही कृपा करते हो। टीचर को हाथ थोड़ा रखेगा आगे, तो हाथ मुरली का हाथ भी हमारे सिर पर है, मुरलीधर का हाथ। तो दूसरी आज्ञा होगी मुरली की। तीसरी, जब भी हम सेवा केंद्र पर जाते हैं बहुत सारी मर्यादाएं वहाँ लिस्ट लगी होती है, जिस काम के लिए हम सेवा केंद्र में जाते हैं उसी काम को वहाँ करना है। अगर दूसरे काम में हमारी बुद्धि चली जाती है, लिखा होता वहाँ बिजनेस की कोई बात नहीं करनी है, लेकिन देखा गया जिस जिसने बिजनेस की बातें की हैं वो सीधा पटरी से धीरे धीरे उतरकर संसार की तरफ चला गया है। सबसे बड़ा बिजनेस तो ये है, भगवान के साथ सबसे बड़ा व्यापारी तो वो है, ज्ञान रत्नों का हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर उस बिजनेस में संसार की तरफ जाते हैं तो घाटा ही घाटा है, नुकसान ही नुकसान है। फिर बुद्धि सारा दिन उसी चिंतन में चलेगी, आज एक से कॉन्टैक्ट करेंगे लौकिक बिजनेस के बारे में, फिर दूसरों को धीरे धीरे करते करते लंबी एक चैन बन जाती है और फिर वो वातावरण खराब हो जाता है। और हमारा फर्ज क्या है, वातावरण को शक्तिशाली बनाना, वातावरण को पवित्र बनाना। और उस वातावरण में अगर हम ऐसी वैसी बातें करते हैं जो वातावरण को गिराने वाली हैं, कमज़ोर करने वाली हैं, तो हमारे पर और ही बोझ चढ़ जाएगा। तो ये भी एक मर्यादा आज्ञा है कि जिस काम के लिए हम वहाँ जहाँ बैठे हैं उसी काम को करना है। दूसरे काम में बुद्धि गई तो बुद्धि जैसे बुद्धि को गोदरेज का ताला लग जाए आज के मूल्य में है। तो मर्यादा है कि सेंटर में या जहाँ भी हम मधुबन में आते हैं तो मधुबन का ही फायदा लेना है। अगर मधुबन में आकर भी बहुत सारे सेवादारी भाई बहने अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कोई फिर कमजोरियों में इसमें चले जाते हैं, तो किसका नुकसान है, उनका खुद का नुकसान है। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आते हैं मधुबन में, और उस टाइम को भी हम ऐसी वैसी बातों में निकाल दें तो क्या कहेंगे उसको। तो ये इतना कीमती समय है, जिस काम के लिए हम आए हैं उसी को करना है। बाबा ने कहा ना, तुम हर एक के गुण देखो, विशेषताएं देखो, अब गुण क्यों देखने हैं। तो तीसरी बात होगी मुरली के साथ जिस काम के लिए हम जाते हैं वही करना है। चौथी बात, कर्म क्षेत्र पर हम आते हैं, कर्म क्षेत्र लेके कौन कौन से आज्ञा मिली है, कर्म करते हुए भी कर्ण करावन हार की स्मृति, निमित्त भाव। बहाने तो क्या होता है, कर्म करते करते सफलता आती है तो अहंकार की जागृति होती है, अहम भाव पैदा हो जाता है। फिर वहाँ जो दूसरी बात कहा बाबा ने, वफादारी, जो भी हमको गुण मिले विशेषताएँ मिली है वो भगवान की देन है, प्रभु की देन है। अगर हम सोच लेते हैं मेरी विशेषताएँ हैं, मेरे गुण हैं, तो जैसे भी वफादार नहीं है भगवान के प्रति। तो वफादार अर्थात जैसे संसार में पति पत्नी का रिश्ता होता है, वफादारी, एक पति के सिवाय दूसरा कोई याद नहीं आए। तो बाबा भी मुरली में क्या कहते हैं, अगर एक बाप के सिवाय दूसरे को भी याद किया तो भी क्या कहेंगे, वफादारी नहीं कहेंगे, बेवफा कहेंगे उसको। तो बाबा के प्रति जैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया कि जैसे ब्रह्मा बाबा यज्ञ में आए तो उसके बाद कोई संकल्प नहीं चला बाहर का, अपना जो तन मन धन पूरा समर्पण कर दिया, उसके बाद एक पैसा भी नहीं लगाया। तो उसी तरह हम यज्ञ में हैं, यज्ञ में जितनी भी हमको सुविधाएं मिलती हैं उसी अनुसार हम उनको यूज़ करें। बाबा कहते हैं ना, एक एक पैसा भी अमूल्य है। तो अगर हम इतना इस बेहद का यज्ञ है, हमारी जवाबदारी है, यज्ञ के रक्षक हैं हम। बाबा कई बार मूल्य में कहते हैं बेहद का यज्ञ है, इस यज्ञ के तुम ब्राह्मण रक्षक हो। तो इस यज्ञ में आकर हमको हर चीज़, हर वो चीज़ जो यज्ञ में है उसकी उतनी तरीके से संभाल करनी है, इकोनॉमी रूप से। ऐसा नहीं है जितना आ रहा है हम उसको आंखें बंद करके यूज़ करते जा रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करें, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, कितनी भी चीज़ें हैं वो, चाहे वो भोजन है या जो भी हमको वस्तुएँ मिलती हैं। ऐसा नहीं हम कुछ भी संग्रहित करते रहें, जितनी चीज़ की ज़रूरत है उतना हम यूज़ करें, तो कहेंगे वफादार। तो ये थी कर्म क्षेत्र में हमें निमित्त भाव के साथ और कर्ण करावन हार की स्मृति में, उसमें हमको अहम न जागृत की मैं कर रहा हूँ, कराने वाले ऊपर वो शक्ति हमको दे रहा है, ताकत दे रहा है, उसकी आशीर्वाद, उसकी कृपा, उसकी छत्र छाया, अगर वो हट जाए तो क्या होगा, हम हैं वास्तव में, हम हैं भी क्या। ये तब उसकी बदौलत ही हम आगे कुछ बढ़ रहे हैं, या उसकी बदौलत के कारण हम सेफ हैं, ब्राह्मण जीवन का सुख ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र पर भी आ गया है। फिर है संबंध संपर्क ही आ गया। संबंध संपर्क में क्या करना है, स्नेह सहयोग, जो बाबा ने कहा परिवार की स्नेही सहयोगी बनो, शुभ भावनाएं, तो है जी न्यारे प्यारे। तो जितना शुभ भावनाओं का स्टॉक हमारे मन में होगा, हमारे मन बुद्धि में जितना भी शुभ भावनाएं भरपूर होंगे, तृप्त होंगे, तो दूसरों को हम शुभ भावना दे सकते हैं, और शुभ भावना कामना तभी रख सकते हैं जब पहले हम स्वयं के प्रति रखते हैं। तो स्वयं के प्रति शुभ भावना कामना रखना अर्थात जरा भी हमारा टाइम वेस्ट ना जाए, व्यर्थ से हमें वैराग्य रहे, अच्छा अच्छा पुरुषार्थ करें। जितना स्वयं के प्रति शुभ भावना कामना दूसरों को भी हम उतना दे सकते हैं। अगर हम स्वयं के प्रति नहीं है तो दूसरों को भी कहाँ देंगे? स्वयं ही स्वाद नहीं चखा शुभ भावनाओं का तो दूसरों को भी कैसे चखाएंगे उसका? तो संबंध संपर्क और उसके संबंध संपर्क में भावने का कैसे आना संबंध संपर्क में? सबको आत्मिक दृष्टि से, दैहिक दृष्टि से नहीं है, लेकिन ये भी लंबे समय का अभ्यास है। उसके लिए बताया ना, अब आत्मा दिखाई तो देती नहीं है। कई बार जैसे कहते आज इतनी आत्मा को देखना, आत्मा रूप में देखना, अब कहाँ दिखाई दे रही। लेकिन उसके लिए एक चीज़ कर सकते हैं हम, इन जैसे कल भी बताया था जो योग का प्रयोग, इन कर्मेंद्रियों को हम इतना शुद्धिकरण कर लें कि दिखाई तो दे देगा लेकिन दे देखते हुए भी हमारी कर्मेंद्रियाँ चलायमान ना हो, विचलित ना हो। जैसे मंदिर में मूर्ति होती है तो मूर्ति को देखकर हमारे कितने ऊंचे विचार होते हैं, शुभ भावना। तो हम तो चैतन्य मूर्ति हैं, चलो दे दिखाई दे रहे, दे ही दिखाई दे, लेकिन चैतन्य मूर्ति है ये, मंदिर में बैठने वाले वही मूर्ति है जिसके पीछे पूरे संसार की भीड़, भक्तों की भीड़ लगी हुई है। तो हमारे चेहरे देखते हुए हमारी कर्मेंद्रियाँ चलायमान होंगी, आंखें धोखा नहीं देंगी, मन में ऐसे वैसे विचार नहीं चलेंगे। इसलिए कई दफ़ा कहते हैं ना, बहने भाई को देखे तो कौन से विचार चलने चाहिए, या भाई बहनों को देखो तो कौन से विचार चलने चाहिए? कौन कौन सी बातें बताई थी? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, और हनुमान और दुर्गा देवी या काली देवी, और माँ जगत माता, और फरिश्ता, और भाई भाई, और ज्योति बिंदु परम धाम के, और शिव शक्ति। तो ये सारी स्मृतियाँ संबंध संपर्क में आते हुए हमको निरंतर बना के रखनी है, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर हम भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं, तो सारे संसार के जो पुरानी स्मृतियाँ हैं वो अपने आप काम करती हैं, क्योंकि वो आदतें पड़ी हैं। तो हमको नई आदतें डालनी हैं संबंध संपर्क में आते हुए भी, ताकि विचलित ना हो, क्योंकि इन आँखों से तो वही देखना है। तो इन कर्मेंद्रियों का शुद्धिकरण करना है। बताया ना कि भगवान की नज़र इन कर्मेंद्रियों के ऊपर भी, शरीर के ऊपर भी उसकी नज़र पड़ी है, तो तन मन धन भी उसका, ये उसकी अमानत है, अब उसकी दी हुई सौगात है शरीर भी, तो इस सौगात को हम कैसे यूज कर रहे हैं? तो इसलिए अगर स्थूल में हमारी प्रैक्टिस होगी तो सूक्ष्म फिर अपने आप हमारी पवित्र वृत्ति बनती जाएगी, शक्तिशाली शुद्ध शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति बनती जाएगी। तो कर्मेंद्रियों का शुद्धिकरण है, स्थूल में हम शुद्धिकरण करेंगे तो सूक्ष्म में शुद्धिकरण वो अपने आप होता जाएगा। तो ये आज्ञा मिली हमको संबंध संपर्क में, और कौन सी आज्ञा मिली है? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है भोजन करते समय। किसको पता नहीं होता, सबको पता होता है, लेकिन देखा है सचमुच अगर भोजन हम साइलेंस में करते हैं, एकांत में करते हैं, अकेले में करते हैं, तो बहुत शक्ति एनर्जी जमा होती है। जैसे हम भोजन करते बातचीत करते हैं तो सारी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। इसलिए कोशिश करके ही करना है भोजन, अगर हम वहाँ नहीं करें तो टिफिन बॉक्स में पैक करके कमरे में अकेले कर लो, सीधी सी बात। अगर वहाँ भी हम बैठ के किसी को थोड़ा सा भी इशारा देते हैं तो कोई कोई मुश्किल, बड़ा मुश्किल हो जाती है, वहाँ बोले तुम अपने देख लो। हाँ, संकट आ जाता है, संबंधों में जैसे विच्छेद हो जाता है। तो भोजन एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए बाबा कहते हैं ना, अगर भोजन बाबा की याद में नहीं खाया, बात करते खाया, तो माया जैसे खा जाएगी और माया शक्तिशाली बन जाएगी। तो भोजन जो भी हमको यज्ञ से अगर मिलता है, चलो हम SFB में पूरा नहीं कर पाते हैं, दूसरा हमने ये देखा, अगर भोजन जितना मिलता है, अगर बाबा की आज्ञा के अनुसार जितना हमको जरूरत है उसी को अगर याद में हम करें, तो वो भोजन भी हमको बहुत शक्तिशाली बना देगा, बहुत ताकतवर बना देगा। बाकी ऐसा भी करो तो सबसे बढ़िया है, लेकिन उसके लिए लंबे समय की प्रैक्टिस समझ के साथ करना है, नहीं तो सीधा अगर डायरेक्ट उसमें कूद के तो उल्टा भी असर हो सकता है। इसलिए उसमें हमको धीरे 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 एंट्री करनी है, क्योंकि वो जो वो भोजन है रियली उसमें बहुत सारा फर्क पड़ता है, जो SFB सॉलिड फूड वेकेशन, लेकिन लंबे समय के पुरुषार्थ के बाद है। नहीं तो क्या होता है, अब सबकी परिस्थितियाँ अपनी, व्यवस्थाएँ अपनी अपनी हैं, अगर सीधा उसमें कूद गए तो एक सर्विस की बजाय डिसर्विस का साधन भी बन जाता है वो, क्योंकि हम सेंटर में जा रहे हैं, एकदम स्वास्थ्य गिर गया, सब लोग उंगली उठाएंगे, और जिसको हम कोर्स करा रहे हैं वो कोर्स कराने वाला पहले बोलेगा, पहले अपने आप को देख लो। तो हमको बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ, बड़ी समझ के साथ चीज़ें करनी है, क्योंकि बाबा भी क्या कहते हैं, हर चीज़ को समझो, परखो, देखो उसको, ऐसे नहीं सीधा कूद पड़ो। तो जो भी यहाँ हमको बताया जाता है उसको बड़ा अपना गहन चिंतन, अपनी बुद्धि भी चलानी है उसके ऊपर, आंखें बंद करके स्वीकार नहीं करना, बताया जाता ना, आंखें बंद करके नहीं, उसके ऊपर पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, नहीं तो हमारी सारी कॉन्शियसनेस की अर्ध घूम जाती है, बाबा की तरफ हमारी बुद्धि कम हो जाती है और उन्हीं व्यवस्थाओं को हमें एकत्रित करने के लिए लगे रहते हैं। तो बड़ा समझ के साथ चाहिए ये चीज़, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, और रियली उसका फर्क पड़ता है, चुस्ती फुर्ती जो एक्टिवनेस, और सारी बीमारियां हमने खुद देखा, हमारी एलर्जी खत्म हो गई। ये तो इतनी हमको छींके आती थी ये मार्च अप्रैल मई जून में, श्वास में प्रॉब्लम थी, सारी खत्म हो गई एलर्जी वाली। फर्क तो पड़ता है उसका, बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन उस समझ के साथ करना हर चीज़ को। तो भोजन एक हमारे इस ब्राह्मण जीवन की ऐसी चीज़ है कि भोजन को भी हम संपूर्ण याद की यात्रा में शामिल कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी आज्ञा मिली है। तो इस आज्ञा का पालन करने से भी हमारी उन्नति होगी, प्रगति होगी। और कौन सी आज्ञा मिली है? हाँ जी, डिजिटल तो बाबा के टाइम में था ही नहीं। हाँ साधनों की, बाबा कहते थे साधन, ये साधन भी तुम बच्चों के लिए मिले हैं, तुम बच्चों के लिए बनाए हैं, लेकिन इन साधनों में हमारी साधना कहाँ खो ना जाए, साधना कहीं भंग ना हो जाए, दोनों का बैलेंस चाहिए, निराधार बनना। साधन है तो भी ठीक है और साधन नहीं है तो भी ठीक है। और हमने देखा है सचमुच, जब साधन नहीं थे तो साधना बहुत शक्तिशाली होती थी, कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं करता था, झंझट ही नहीं होता था, कोई फ़ोन ही नहीं आता था, और अगर अभी फ़ोन नहीं उठाया तो अगर जब वो बाद में मिलेंगे तो 10 बातें पहले सुना देते। तो साधन भी सचमुच हमारी साधना को क्षीण करते हैं, हाँ अगर उनका हम उचित तरीके से प्रयोग करते हैं तो वो हमारी साधना में सहायक सार्थक सिद्ध हो सकते हैं, अगर अनुचित प्रयोग करते हैं तो ये जैसे हमारी शक्तियाँ सारी खा जाते हैं। तो साधन भी हमारी साधना को भंग ना करें, तो ये हमको भी ये भी ध्यान रखना है। डिजिटल हम कितना टाइम दे रहे हैं, जितना जरूरत है हम उतना यूज़ करें, एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है, सचमुच बहुत सारी एनर्जी चली जाती है। इसलिए जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो इनसे डिटैच होकर बैठना है, साइलेंस कर दो, नहीं तो एक थोड़ा भी चलता है तो कितनी सारी जो ऊपर उड़ने का प्रयास करते हैं, थोड़ा ही मोबाइल बजता है बुद्धि तो खींचती है ना उधर। तो हमको ये देखना है। और कौन सी आज्ञा मिली है? हाँ, चार्ट, सारे दिन में एक है चार्ट लिखना, लिखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक कॉमन चार्ट हमारा सारे दिन में हो जाता है, सवेरे से लेकर रात्रि तक, तो हमको सूक्ष्म उसका पता तो रहता है क्या क्या हो रहा है सारे दिन में। तो उस चार्ट को भी हम बाबा को सोते समय अच्छी तरह से दे देंगे तो वो निश्चित तौर पर हमारा चार्ट सारे दिन में अगर ठीक रहता है, कोई भी कमी कमजोरी रहती है तो बाबा को देने के बाद वो कमी कमजोरियाँ समाप्त होती जाती हैं। तो चार्ट लिखना भी अनिवार्य है। सोने के लिए बाबा ने शिक्षा दी है कि सोते समय भी क्या करना है, बुद्धि को खाली करके और आंख बंद करके सो जाना, और खुली आंख से भी सोते हैं। और बाबा ने कहा कि जब सोते हैं तो कमरे में बातचीत नहीं करनी है, है ना, क्योंकि कई बार बताया भी ना, माया कब आती है? जब हम कमरे में पहुंचते हैं, जब हम खटिया पर पहुंचते हैं तब माया चालू होती है। किस रूप में? कभी मोबाइल के रूप में आएगी, है जी, न्यूज़ के रूप में आएगी। तो ये चीज़ें हमारे जीवन को प्रगति की तरफ नहीं ले जाती हैं, अवनति की तरफ ले जाती हैं। तो बाबा की याद में थोड़े महावाक्य सुन के, पढ़ के, उसका चिंतन करके, या रात्रि मुरली पढ़ के अगर सोएंगे तो रात को वही संकल्प चलेंगे। और देखा, अगर सारे दिन की दिनचर्या अगर कहीं किसी को हम समझा रहे हैं तो कई बार सपने में भी समझाते रहते हैं किसी को। एक बार क्या हुआ, सपना आया तो हम कोई पार्टी आई समझाने के लिए, और वो मान नहीं रहा था, बोला परमात्मा सर्वव्यापी है। तो लंबे समय थे इसमें, हम उसको समझाते रहे, फिर हमको क्रोध आ गया एकदम। तो फिर हमने उसको हाथ से हाथ से दिया, क्यों नहीं मानते कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है? तो सपने वैसे चलते हैं फिर, जो हम सारे दिन में करते हैं। तो देखना है कि सारे दिन की दिनचर्या का जो प्रभाव है वास्तव में हमारी नींद पर पड़ता है। बाबा ने कहा ना, नींद साकार जीवन का, जो सारे दिन में साकार है हमारा जो जीवन है स्थूल, उसका प्रभाव भी सूक्ष्म पर पड़ता है। तो ये बहुत सारी आज्ञा मिली है। दूसरा है वफादारी। वफादारी किस रूप में? बाबा ने कहा शिक्षक के रूप में वफादारी, और बाप के रूप में, और सतगुरु के रूप में, बाप के रूप में फरमान बरदार, सतगुरु में के रूप में आज्ञाकारी, है ना, मुरली है 74 की मुरली में है। तो बाप के रूप में फरमान क्या मिला हुआ है, दो दिन पहले मुरली में था, तीन दिन पहले, जब तक यज्ञ है तब तक पवित्र रहना है, पवित्रता का फरमान मिला है। तो ये भी एक बहुत बड़ी यज्ञ है। मनसा वाचा कर्मणा समन संपर्क, हम अपने थॉट सिस्टम को कितना प्योर कर रहे हैं, कितना शुद्ध संकल्पों का उसमें खजाना भर रहे हैं, हमारे बोल से पवित्रता के कितने शुद्ध वाइब्रेशन आ रहे हैं, कितना दूसरों को हम सुख दे रहे हैं, हमारे कर्मों से कितना दूसरों को सुख मिल रहा है। और सचमुच हम सेंटरों में रहते हैं या घर में रहते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के प्रति संसार की बहुत ऊंची अपेक्षाएं रहती हैं। जैसे सेंटर में भी भाई बहन आते हैं, किस लिए आते हैं, घर के अशांत वातावरण से थोड़ा समय निकालकर अपने आप को चार्ज करने के लिए। तो बाबा कहते हैं हर एक घर भी क्या है, सेवा स्थान है, सेवा केंद्र है। तो उस सेवा स्थान पर हम रहते हैं तो जो लौकिक हमारे रिश्तेदार संबंधित संपर्क वाले होते हैं उनको भी बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं कि इनसे हमको कुछ शांति की, सुख की अंचली मिले, कुछ प्राप्ति की अनुभूति हो। तो हमको सारे दिन में स्वयं को कितना चार्ज करना पड़ेगा। इसलिए प्रमाण मिला हुआ है हम सबको, किसका, पवित्रता का। तो हम स्वयं की पवित्रता को इतना बढ़ा लें कि वो निरंतर वाइब्रेशन काम करते रहें, और ये सूक्ष्म स्तर पर स्वयं को खुद ही व्यक्तिगत रूप से करना पड़ेगा। तो पवित्रता की आज्ञा मिली है, और कौन सी आज्ञा मिली है, हाँ जी, पांच मंत्रों को, हाँ, सी नोएबल, टॉक नोएबल, हियर नोएबल, थिंक नोएबल, डू नोएबल, ईट नोएबल, रीड नोएबल, ऐसे बहुत सारी ईवल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मिली है। तो ये सारी मर्यादाएं हमारे जीवन की क्या है, संजीवनी बूटी है। अगर इन मर्यादाओं का हम पालन करते हैं तो सेफ हैं, अगर मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं तो जैसे रावण सीता को उठा कर ले गया, ऐसे सारे दिन में रावण उनको बार बार उठा के ले जाता है, और फिर हम बार बार उसके चुंगल से निकल के फिर आते हैं, फिर जब विस्मित तो फिर उठा के ले जाता है वो। तो सारा दिन माया हमको ले जाती रहती है। इसलिए संडे की मुरली बाबा ने क्या कहा कि हमेशा कहाँ रहो, ऊपर रहो, क्योंकि माया को ऊपर चढ़ने नहीं आता है। तो माया की कमजोरी संडे को पता चल गई थी, तो हम हमेशा ऊपर क्यों ना रहे, नहीं तो माया नीचे से खींच के ले जाती है। तो हमेशा हमको ऊंची स्थिति पर स्थित रहना है। और कौन सी आज्ञा मिली है, संग, जैसा संग वैसा रंग। एक बाप के संग में रहेंगे तो श्रेष्ठ आत्माओं के संग में, क्योंकि संग बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हम ब्राह्मण जगत में रहते हैं, ब्राह्मण जगत में भी देखना है कि कौन सी आत्माएं जो अच्छा पुरुषार्थ कर रही हैं, या कौन सी आत्माएं हैं जो हमारे लिए वो उन्नति का साधन बन सकती हैं। तो उस संग का हमको साथ रखना है। और दूसरा संग बेहद के बाप का संग, वो तो है ही है, तो निरंतर उसकी छत्रछाया में रहना है, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग चढ़ेगा। और धीरे धीरे तो पता नहीं चलता, लेकिन धीरे 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 वो संस्कार अंदर में समा जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, संग में आने से कई बार पुरुषार्थ जब हमारे से नहीं हो पाता है, तो ऐसा संग मिलता है कि जो पुरुषार्थ नहीं करते उनके संग में जाएंगे तो हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो अंदर में थोड़ी एक आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हाँ हमारे जैसे दूसरे कोई और भी हैं, तो एक खुशी मिलती है अंदर में। फिर धीरे धीरे उन्हें उसी मंडली में हम चल पड़ते हैं, और लेकिन अंदर की जो खुशी है ना वो गायब हो जाती है। अंदर में एक असंतोष रहता है। कौन सा असंतोष, एक डर का असंतोष रहता है, भगवान से दूर होने का असंतोष रहता है, परिवार से सहयोग ना होने का असंतोष रहता है, अवज्ञाओं की जैसे वृद्धि होती जाती है, वो बोझ बढ़ता जाता है, और एक गिल्ट कॉन्शियस। तो भले बाहर से हम खुश रहते हैं, सबके साथ मिलते जुलते हुए पिकनिक कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, लेकिन अंदर की खुशी गायब है बिल्कुल। वो चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखती है कि वास्तविक सच्ची खुशी कौन सी है और झूठी खुशी कौन सी है। तो ये भी एक हमको आज्ञा मिली है कि संघ हमको श्रेष्ठ श्रेष्ठ करना है। इसलिए संघ के बारे में दीदी मनमोहन जी कहते थे कि मधुबन में आए हो तो संघ की संभाल रखना, क्योंकि बेहद का परिवार है, यहाँ बेहद का संघ है, तरह तरह के संस्कार वाले आत्माएं हैं। तो हमको खुद ही देखना है कि कौन से संघ में रहना है, और लंबे समय से अगर हमारा संघ अच्छा है तो हमारी प्रगति हमको स्वयं ही महसूस होती है। अगर थोड़ा सा भी पांव फिसला तो फिर सीधा एकदम चढ़े तो चाके बैकुंठ रंग, गिरे तो चकनाचूर। तो संघ की भी संभाल करना बहुत अनिवार्य। और हमने देखा जिन्होंने शुरू से संघ की अगर संभाल रखी है तो वो प्रगति पथ पर धीरे धीरे भले लेकिन वृद्धि होती जा रही है। और जैसे संघ की संभालनी है, लूज टॉकिंग है, या खाने पीने में चले जाते हैं, या घूमने फिरने में चले जाते हैं, तो प्रगति नहीं होती है फिर वो। और दूसरा संघ संगठन का ही बहुत बड़ा संघ है। संगठन में आना ही अपनी सेफ्टी निश्चित करना है वो, क्योंकि संगठन में भले हम यहाँ कुछ सुनाए नहीं सुनाए, केवल आके रोज बैठो, सुनो, थोड़ा सा दो अक्षर भी ग्रहण करेंगे तो संगठन हमको सुरक्षित करके रखेगा। नहीं तो संगठन की हमें कभी कमजोरियां देखने की आदत पड़ गई एक बार तो वो स्वयं को नुकसान करेंगी, दूसरों का कुछ नहीं होगा लेकिन स्वयं को नुकसान कर देंगी। इसलिए संगठन इतना बेहद का संगठन है, बेहद का परिवार है, यहाँ आकर बैठना भी जैसे संगठन को एक सहयोग देना है, वातावरण को शक्तिशाली बनाने के सहयोग, क्योंकि एक ना एक दिन तो हमारा मन जो है वो एकदम उड़ान भरने योग्य बन जाएगा। संगठन में बल है, संगठन की इतनी शक्तिशाली वाइब्रेशन है कि धीरे धीरे हमारी कमी कमजोरियों को स्वतः खत्म करेंगे। उमंग उत्साह अपने आप बढ़ेगा और अपने आप उमंग उत्साह आता है जो चीज़ें जिन चीज़ों में अपने आप को कमजोर समझते हैं, कोई बोलने की किसी को आदत नहीं है तो धीरे धीरे वो अपने आप उड़ान भरते हैं, बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं, हमारी मन बुद्धि की ब्लॉकेज खुल जाती है, बहुत सारी कई सारी बातें ऐसी नहीं सीखने को मिलती जो हमको पता ही नहीं था बिल्कुल भी। तो संघ की बड़ी संभाल और कौन सी आज्ञा मिली है, हाँ हम हैं बेहद के सन्यासी, हद के सन्यासी नहीं है, है? क्या हाँ बाप की आज्ञा सदा खुश रहना, स्वर्ग राज्य अधिकारी आत्मा अर्थात सदा खुश रहने वाले, संडे की मुरली में ना, और ड्रेस की आज्ञा, हाँ ये ड्रेस भी हमारी एक विशेष आज्ञा है, अगर हम ड्रेस में रहते तो हमको स्मृति रहती है हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम किस लिए आए हैं, हमको क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये ड्रेस भी हमारी जैसे एक आज्ञा में हमको बांध कर रखती है। और बैज, और बैज लगा के रखना, हाँ बैज भी अगर जिस दिन नहीं लगाओ तो खाली खालीपन लगता है, और हाँ इकोनॉमी, बोल की इकोनॉमी, बोलना जितना कम बोलेंगे उतना एनर्जी हमारी सेफ रहेगी, और रॉयल देवता कम बोलते हैं, हाँ आज ही बुंदी में बोला, तो हम देवी देवता की रॉयल कुल की आत्मा हैं तो हमारे बोल भी वैसे होने चाहिए, देवताओं के लक्षण, वो तो बाद में नहीं अब भी हमको अनुभव करना है कि वो देवता ही लक्षण हमारे में हैं या अभी भी वो आसुरी लक्षण हैं जो अपना काम करते जा रहे हैं, और इस पर थोड़ा स्वयं ही हमको नज़र रखनी पड़ेगी। तो देखना है देवताओं की तस्वीर के, बाबा कहते हैं चित्रों के आगे जाके बैठ गए लक्ष्मीनारायण को देखो, लक्ष्मीनारायण गप शप मारते हैं कभी, किसी के बारे में प्रचिंतन करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं वो, तो लक्ष्मीनारायण के सामने चित्र के बैठ जाओ, सोचो उनको ओहो मैं ये बनने वाला हूँ और मैं गपशप मार रहा हूँ, लक्ष्मण मोबाइल चलाते हैं, वो फिल्म देखते हैं, वो सीरियल देखते हैं, मोबाइल ही नहीं उधर नहीं लेकिन प्रैक्टिकल में तो अभी है ना, अभी तो लक्ष्मण से तो ऊंचे हमारा जन्म है, बाबा ने कहा ब्राह्मण चोटी है, वो तो वहाँ से फिर भी एक हिसाब से गिरती गलाई है, हमारी तो उड़ती गला है, तो उनसे तो हम ऊँचे हुए फिर, तो फिर जो लक्ष्मीनारायण के लक्षण हैं वो तो पहले हमको यही अनुभव करने हैं सारे, जीवन मुक्ति स्थिति का, जीवन मुक्ति स्थिति का तो अभी अनुभव करना है, बाद में थोड़ा अनुभव अनुभव होगा। जो यहाँ सेल्फी लेते हैं वहाँ भी मंदिर में जाके, अजब पूजा नहीं करेंगे वहाँ भी सेल्फी लेंगे उनकी और क्या आ गया, तो हाँ जी नुमा शाम का योग, हाँ मुरली में है बाबा ने कहा 7 से 7:30 का योग कभी मिस नहीं करना, अव्यक्त वहाँ हम आके हैं बाबा के, तो सचमुच शाम का योग भी बहुत शक्तिशाली होता है, जैसे अमृतुल्य का योग होता है कई बार शाम का योग उससे शक्तिशाली होता है, तो अमृतुल्य के महत्व को जानते हुए नुमा शाम के महत्व उतना रखना है, क्योंकि शाम के टाइम में जो हम बैठते हैं तो संगठन के वाइब्रेशन और भगवान की आज्ञा का पालन, जो आज्ञाकारी का, तो भगवान की आज्ञा का पालन करें तो आज्ञा का पालन जहाँ हम करते हैं वहाँ बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जिसका हम आज्ञा का पालन करते हैं उसका आशीर्वाद स्वतः मिलता है, आशीर्वाद जैसे एक वरदान की तरह काम करता है, जिसकी आज्ञा का हम पालन करते हैं उसका हमारे ऊपर फिर फेथ बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, आंखें बंद करके हमको वो जिम्मेवारी सौंप देंगे, और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं वो सबकी आंखों का तारा बन जाता है, और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं क्या होता है, स्नेही बन जाते हैं, सर्व के स्नेही बन जाते हैं, हल्के रहते हैं वो, और एक अंदर में एक दृढ़ता भी आ जाती है, विश्वास अंदर जागृत होता है, उसको चिंता नहीं होती है क्योंकि आज्ञा का पालन कर दिया निश्चिंत हो गए, उसका वो कर्म हमने कर दिया निश्चिंत हो गए, अगर आज्ञा का पालन नहीं किया तो दूसरा भी हमको कोई जवाबदारी नहीं देगा, तो कितने बेनिफिट्स है, दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है हमारा, हम निर्विघ्न बन जाते हैं, स्वयं प्रसाद का रास्ता अपने आप खुल जाता है, तो आज्ञा पर चलना, जैसे घर में माँ बाप किसको प्रॉपर्टी देते हैं, कौन से बच्चे को, जो आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो बाबा भी हमको सारे दिन में शक्ति तो सबको देता है लेकिन अनुभूति उसी को होगी जो आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, अगर आज्ञा का पालन नहीं करते तो शक्ति ले वो दे तो रहा है लेकिन हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने अवज्ञाएं की हैं। कौन सी आज्ञाओं का पालन किया? रावण की आज्ञाओं का पालन किया, इसलिए रावण की शक्ति मिलेगी। अगर भगवान की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो भगवान की शक्ति मिलेगी, सीधी सी बात है। हाँ, बाप आए हैं तुम्हारी शुद्ध मनोकामनाओं को पूर्ण करने और रावण करता है अशुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण करने। अगर रावण की मत पर चले तो माया के भूत आएंगे, राम नाम सत करके ले जाएंगे वो। माया के भूत ले जाएंगे, भूत प्रवेश करेंगे, भगवान का रूप लेकर ले जाएंगे तुमको। कहाँ ले जाएंगे? अरसातल में। तो कितनी सारी ढेर आ गए हैं। ट्रस्टी, ट्रस्टी बनकर रहो। हाँ हाँ जी, डोनेशन। हाँ, कंजूस नहीं बनने। तो कंजूस नहीं बनना, हर एक चीज की भावना ने कितनी आज्ञाएं दी हैं। ट्रस्टी होकर रहो, कुछ चीज भी अपनी नहीं, किसी में ममत्व नहीं है, संबंधों में ममत्व नहीं है, है ना। एक बाप दूसरा ना कोई, इसकी जितने भी संबंध है उनको हम ट्रस्टी। भावना ने कहा, मुरली में कहा है, बाहर वालों से निभाना है कैसे, लेकिन ऊपर ऊपर से प्यार करो, अंदर का प्यार नहीं, अंदर का प्यार मेरे से करो। है तोड़ निभाना, उनको तोड़ना नहीं है, तोड़ निभाना उनके साथ। और कर्म योगी, कर्म करते हुए हमारा योग बाबा से लग रहे। तो ऐसे अनेकों आज्ञाएं हैं जो हमारे जीवन को सुरक्षा सुरक्षित रखती हैं, सुरक्षा चक्र की तरह है। तो ये है आज की मुरली, प्यूरिटी, पवित्रता की आज्ञा बीच में आ गई। तो फिर से रिवाइज कर देते हैं, अमृत वेले से रात्रि तक अनेक प्रकार की आज्ञा मिली है। अमृत वेले क्या क्या करना है, कैसे अलर्ट होकर बैठना है, कैसे बाबा से वरदान लेने हैं, बाबा से रूहान करनी है, जो पवित्रता की आज्ञा है। तो अमृत वेले सवेरे स्वयं को महसूस करना है, जैसे पवित्रता का सागर मेरे ऊपर अवतरित हो गया है। तो पवित्रता से संबंधित हम 5 मिनट कमेंट्री कर भी लेते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो कमेंट्री करते हैं, तो ये पवित्रता की आज्ञा मिली हुई है। फिर सारे दिन में मुरली सुनते समय हमको क्या करना है, कर्म क्षेत्र पर क्या करना है, संबंध संपर्क में आते क्या करना है, चार्ट कैसे रखना है, रात्रि को सोना कैसे है, बाबा के साथ वफादार कैसे रहना है, यज्ञ के प्रति कणों में के लिए कौन कौन सी आज्ञा मिली है, संघ की संभाल कैसे करनी है, मैं और मेरेपन के लिए कौन कौन सी आज्ञा, मैं और मेरेपन को भी जैसे बाबा को दे देना है। मैं कौन हूँ, बाबा ने क्या, अगर मैं शब्द याद आए तो मैं आत्मा हूँ, और मेरा याद आए तो मेरा बाबा। तो अभी 5 मिनट पवित्रता से की हम कमेंट्री करेंगे। ओम शांति। सभी सोमान की स्मृति के स्वरूप बनकर बैठेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं प्रकाश की काया में वृक्ति सिंहासन पर विराजमान परम पवित्र आत्मा हूं। मुझ प्रकाश में फरिश्ते के ऊपर बाप दादा का वरदानी हाथ लाइट के रूप में मेरे सिर पर है। वो पवित्रता का सागर अपना वरदानी हाथ मुझ फरिश्ते के सिर के ऊपर रखकर मुझे संपूर्ण पवित्र बनाने के लिए अवतरित हुआ है। पवित्रता के सागर की संपूर्ण पवित्रता मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मुझ आत्मा से संपूर्ण पवित्रता के वाइब्रेशन प्रवाहित होकर मेरी कर्मेंद्रियों में समाते जा रहे हैं। सारे शरीर में करंट की तरह पवित्रता के वाइब्रेशन घूम रहे हैं। जैसे शरीर में खून दौड़ रहा है, ऐसे ही सारे शरीर में, नस नस में, रग रग में तीव्र वेग से पवित्रता के वाइब्रेशन घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। सिर की चोटी से लेकर पांव तक प्योरिटी ही प्योरिटी के वाइब्रेशन, तरंगे ही तरंगे प्रवाहित हो रही है। चारों ओर पवित्रता ही पवित्रता की वाइब्रेशन फैलते जा रहे हैं। स्वयं पवित्रता का सागर मेरे साथ बैठा हुआ है, उसका वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। संपूर्ण पवित्रता मेरी आंखों में समाई है। संपूर्ण पवित्रता की रोशनी से ये आंखें जगमगा उठी हैं। जैसे मैं चमकीली आंखों वाला फरिश्ता हूं, पवित्रता ही पवित्रता की चमक से आंखों का तेज बढ़ता जा रहा है। जहां जहां भी ये दृष्टि पड़ेगी, वहां पवित्रता के वाइब्रेशन सबको पवित्र बना देंगे। जैसे मेरी आंखों के सामने सृष्टि का ग्लोब है, मेरे सिर के ऊपर पवित्रता के सागर का हाथ है, आंखों में उसकी संपूर्ण पवित्रता समाई हुई है और आंखों के सामने सृष्टि का ग्लोब है। उस सृष्टि के ग्लोब को शक्तिशाली पवित्रता के वाइब्रेशन जा रहे हैं, उसमें समा रहे हैं। संसार की समस्त आत्माएं उन पवित्र वाइब्रेशन से नहा रही हैं। पवित्रता का जैसे स्वाद चख रही है, आनंद ले रही है। संपूर्ण पवित्रता का शक्तिशाली करंट उस सृष्टि रूपी ग्लोब को जा रहा है। प्रकृति के पांचों तत्वों सहित संसार की सर्व आत्माएं संपूर्ण पवित्र बनती जा रही है। संपूर्ण पवित्र बन गई है। पवित्रता के सागर का वरदानी हाथ सर्व आत्माओं के सिर पर है। सर्व आत्माएं संपूर्ण पवित्र बन गई हैं। चारों तरफ प्यूरिटी ही प्यूरिटी के शक्तिशाली वाइब्रेशन वातावरण में, प्यूरिटी ही प्यूरिटी की सौगंध, खुशी, शांति, शक्ति से आत्माएं जैसे झूम उठी हैं। कितना अद्भुत, सुंदर, मनमोहक, अलौकिक नजारा है। निरंतर मेरी आंखों से शक्तिशाली पवित्रता की रेज किरणें संसार में घूम रही हैं। जैसे संसार को सूर्य रोशनी दे रहा है, ऐसे मैं भी मास्टर पवित्रता का सूर्य सारे संसार को दिन भर पवित्रता की रोशनी देने के लिए ही अवतरित हुआ हूँ। मेरा एकमात्र कर्तव्य संसार को पवित्रता के वाइब्रेशन देना है। स्वयं पवित्रता के सागर के साथ कंबाइंड होकर सारे दिन में इस कर्तव्य में तत्पर रहना है। ओम शांति, ओम शांति।
युगों युगों के जन्म जन्म के भक्ति का फल पाए हैं, भाग्य बड़े भगवान हमारे घर बैठे वो आए हैं।
जन्म जन्म के भक्ति का फल पाए हैं, भाग्य बड़े भगवान हमारे घर बैठे वो आए हैं।
ऐसी किस्मत सबकी जागे,
ऐसी किस्मत सबकी जागे, गाते मन के तार कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है। सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है,
कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है। सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है, माता पिता भाई बहनों का, माता पिता भाई बहनों का सुंदर सा संसार, कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है। सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है, कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है। सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है, कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है। सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है।